اسماء الحسنی پر تدبر کے سلسلے میں آج ہم اللہ تعالیٰ کے دو ناموں پہ غور کریں گے، القادر اور القدیر۔ پوری قدرت رکھنے والا، کامل قدرت رکھنے والا اور بڑی ہی قدرت رکھنے والا، دونوں کا روٹ قاف دال را ہے، قدر۔ قدر کہتے ہیں اندازے کو، تو قادر مکمل اندازہ رکھنے والا۔ اندازہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں آپ جو ایکسپیکٹ کریں، جو امید رکھیں، وہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، یہ بھی اصل میں اللہ کے اندازے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت 37 میں آتا ہے، قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی معجزہ اگر نہیں دکھایا جا رہا تو یہ نہ سوچو کہ ہم معجزے دکھانے سے عاجز ہیں، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے، لیکن لوگ اپنی نادانی سے سمجھتے نہیں۔ زندگی میں انسان بہت ساری چیزیں چاہتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ نہیں ہوتی۔ ایسے تمام لمحوں میں اس بات کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ وہ کام کرنے پہ قادر نہیں ہے، یا وہ کر نہیں سکتے، یا اللہ تعالیٰ کے بس میں نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر القادر ہیں تو ساتھ ہی ساتھ وہ الحکیم بھی ہیں۔ اس لیے اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن کو ان ساری چیزوں سے پاک کرنا پڑے گا جو شبہ ڈال دیں کہ پھر کیوں نہ ہوا، مریض ٹھیک کیوں نہ ہوا، بیمار اچھا کیوں نہ ہوا، فلاں کو مال کیوں نہ ملا۔ تو یہ اندازوں سے جڑی ہوئی قدرت ہے۔ اگر آپ ربط دیکھیں نا، تو بڑا لطیف سا نقطہ اس میں کہ اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت جڑی ہوئی ہیں آپس میں۔ اس کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ کس کام کو کرنا حکمت کے خلاف ہے اور کس کو کرنا حکمت کے خلاف نہیں ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت 65 میں آتا ہے، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعدکم بأس بعد۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کرے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ اس آیت میں عذاب کے آنے یا نہ آنے پر اللہ کی قدرت کی بات کی گئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بے بسی نہیں ہے، بلکہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے عذاب کو دور سمجھ کر اپنے آپ کو حق کی دشمنی پہ جرت دے لیتے ہیں، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب اللہ پکڑے گا تو وہ پھر تمہیں چھوڑے گا نہیں، ایک ہوا کا ہلکا سا جھونکا تمہیں برباد کر سکتا ہے، زمین کی ہلکی سی جنبش زلزلے کی صورت میں تمہیں مٹی میں دفن کر سکتی ہے۔ تم بڑے بڑے ہو، لیکن اللہ تمہیں ایک لمحے میں ایک مچھر سے زیادہ جلدی ہلاک کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی اس صفت کا اندازہ لگائیں تو انسان کو بہت زیادہ خوف آتا ہے۔ آپ کو دنیا میں کسی کے بارے میں پتہ چل جائے نا، فلاں کے ہاتھ لمبے ہیں، فلاں بڑا سورسفل ہے، اس کے بڑے رابطے ہیں، تو فوراً انسان ٹھنک جاتی ہے نا، اس کا ذہن، اچھا ایسے وہ، او اچھا۔ تو ذرا سوچئے کہ پھر جس ذات نے یہ سب کچھ بنایا، جو ایک لمحے میں سب کچھ کر سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے، بنا بھی سکتا ہے، پھر اس سے کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ کیا واقعی ہم اللہ کو القادر سمجھتے ہیں؟ اگر اللہ کو القادر سمجھ لیں تو ہماری زندگیوں میں کبھی مایوسی نہ رہے۔ ہوتا کیا کہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہاں جی اللہ بڑا قدرت والا ہے، گھروں میں اس کے قطعے بھی لگے ہوتے ہیں، لیکن بعض افونسی کے نیچے بیٹھ کے لوگ مایوسی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا القادر ہونا یا القدیر ہونا انسان کی زندگی میں امید کی کرنیں پیدا کرتا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی نہیں گرتا۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے وہ مالک جس کے ہاتھ میں یہ سارے کام ہیں وہ بہت طاقتور ہے، میں کچھ نہیں ہوں، मेरे अंदर ताकत भी नहीं है, लेकिन ऐ अल्लाह तू मुझे मजबूत कर दे। फिर अल कादिर के साथ ताल्लुक़ जुड़ता है। इसी तरह सूरह बनी इसराइल आयत 99 में आता है, अवलम यरौनल्लाहल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वलअर्द क़ादिरुन अलै यख़लुक़ मिस्लहुम। क्या इनको ये ना सूझा कि जिस खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया वो इन जैसों को पैदा करने की ज़रूर कुदरत रखता है। यानी क्या ये उससे डरते नहीं हैं? इनका ख्याल है कि उसकी कुदरत ख़त्म होगी हम पे। सूरह यासीन आयत 81 में आता है, अवलैसल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वलअर्द बिक़ादिरिन अलै यख़लुक़ मिस्लहुम। क्या वो जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया इस पर कादिर नहीं कि इन जैसों को पैदा करे? यानी क्यों समझते हो कि मरने के बाद ज़िंदा नहीं किए जाओगे? या तुम अगर पैदा हो गए हो तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता? या तुम जैसा कोई और पैदा नहीं हो सकता? वो सब कुछ बना सकता है। जिसने एक को पैदा कर दिया वो बाकियों को भी पैदा कर सकता है। सूरत अलअहकाफ़ की आयत नंबर 33 में आता है, अवलम यरौ, क्या उन्होंने नहीं देखा, इन्नल्लाहल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वलअर्द वलम या बिखल्क़िहिन्न बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता। और क्या इन लोगों को ये सुझाई नहीं देता कि जिस अल्लाह ने ये ज़मीन आसमान पैदा किए इनको बनाते हुए जो थका भी नहीं वो ज़रूर इस पर कादिर है कि मुर्दों को ज़िंदा करे? सारी आयतों में कुदरत का जिक्र है। और किस बात की? कि मरने के बाद तुम उठाए जाओगे। सूरह क़यामत आयत 40 में भी आता है, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता। अब देख रहे हैं कि ये लफ्ज़ ज़्यादा मौत और हयात के ताल्लुक से आ रहा है कि मरने के बाद दोबारा जीना, या इंसान की पैदाइश जो माँ के रहम में होती है इससे इस नाम का ज़्यादा ताल्लुक है। और वो लोग जो ये तो मानते हैं कि माँ के पेट में बच्चा मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र कर एक इंसान बन के दुनिया में आता है, फिर वो ये क्यों नहीं मानते कि मरने के बाद दोबारा जब उठाया जाएगा तो अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसके हाथ में ये सब कुछ है। अगर कोई ये ना माने तो फिर तो वो कुछ भी नहीं मानेगा। अब देखिए दुनिया का निज़ाम कितना तरीके से चल रहा है, जितनी औरतें हैं मर्द हैं, कुछ कमी बेशी भी हिकमत ही का तकाजा है, लेकिन सिलसिला चल रहा है। क्या ये सब इत्तेफाक है? कोई ये कह दे ये खुद ही हो रहा है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को शर्मिंदा करने वाली बात है। ये तो ऐसे जैसे कोई उठ के कह दे कि कोई भी मुल्क मिसाल ले लें, बड़ा सा मुल्क है, ये खुद से खुद बन गया, किसी ने कोई मिल नहीं लगाई, किसी ने कोई सड़कें नहीं बनाई। बस आप देखिए कि लंदन कोई के ये खुद ही बन गया, किसी ने इसमें कुछ नहीं किया। इस वक्त भी कोई कुछ नहीं कर रहा, बस खुद ही सड़क टूटती है फिर बन जाती है, खुद ही यहाँ घर बन जाते हैं। कोई मानेगा? कोई कर रहा है ना काम? तो ये कायनात अल कादिर की कुदरतों का नतीजा है। ये उसका एक अमली इजहार है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सूरह तारिक आयत 8 में भी आता है, इन्नहु अला रजईही लकादिर, यकीनन वो खालिक तो इंसान को दोबारा पैदा करने पे कादिर है। आ सकते हो तो जा भी सकते हो, मुख्तलिफ मरहलों से गुज़र के दुनिया में आए हो, इसी तरह मुख्तलिफ मरहलों से गुज़र के तुम कब्र में पहुँचोगे और कब्र से एक नई दुनिया में निकल जाओगे। तुम किसी हादसे का नतीजा नहीं हो, तुम उस अलकादिर की कुदरत का एक अमली इजहार हो। ये लफ्ज़ बहुत जगह आता है, ख़ास तौर पर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, इसको अगर आप देखें तो सूरह बकरा की आयत 20 में, फिर इसी तरह आयत नंबर 106, 109, 148, 259, 284, ये सारी सूरह बकरा की आयतें हैं। सूरह आल इमरान की आयत 26, 29, 169, 189, सूरह माईदा में 17, 19, 40, 120, सूरत अलनाम आयत 17, अनफाल आयत 41, तौबा 39, हूद आयत 4, सूरत नहल आयत 70, 77, सूरह हज आयत 6, 39, सूरत नूर आयत 45, अनकबूत 20, रोम 50, 54, फातिर की आयत 1, फुस्सिलात आयत 39, शूरा की आयत 9, 29, 50, अलहकाफ़ की 33, अलहदीद आयत 2, अलहशर 6, अलमुमतहना की आयत नंबर 7, अत्तगाबुन की आयत नंबर 1, सूरह तल्लाक़ की आयत 12, तहरीम की 8 और सूरह मुल्क की आयत नंबर 1 में ये सिफत आई है। और ज़रा गिन के देखें, तकरीबन 20 से लेके 40 दफा लग रहा है कि यही होगी। क्या हमें यकीन है? एक आयत जिसका बार बार तस्कर है, हमारा यकीन क्यों नहीं है उस पे? कौन है जो रात से दिन को, दिन से रात को निकालता है? अंधेरा होता है और उसमें रोशनी आती है। आप सिर्फ सूरज की हरकत को देखते रहें तो आप सोचेंगे ये कैसे हो रहा है। जिसका इकतदार सूरज पे है, जिसका इकतदार चांद पे है, जो रात और दिन का मालिक है, फिर सोचिए कि हक और बातिल उसके हाथ में नहीं है। मुझे किसी ने बताया कि एक ऐसी जगह है हकीकत में, यानी हमने ये जो बातें सुनी हुई हैं शुरू से कि फलां जगह वहाँ 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता और रात रहती है, और फिर इसी का ऑपोजिट भी, तो मुझे किसी ने बताया कि नॉर्वे ही में ऐसी एक जगह है, नाम मुझे याद नहीं है उसका, कह रहे हैं कि वहाँ पूरे 6 माह तक सूरज नहीं डूबता, यानी डूबता ही नहीं। कह रही मैं वहाँ गई और रात के 2 बजे हुए थे और कड़कड़ाती हुई धूप थी। मैंने कहा फिर लोग सोते कैसे हैं? कहती खुद ही वक्त देख के जब नींद आती है तो पर्दे बनाए हुए ऐसे वो तानते हैं तो सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, क्योंकि जिस्म को तो नहीं पता ना बाहर रात है कि दिन है, उसको तो थकन हुई उसने सोना है। और वैसे भी देखें तो बाकी लोग कौन सा रात और दिन को देख के सोते हैं? हम तो तब सोते हैं जब हमारे हंगामे ख़त्म हो जाते हैं और फिर हमें दोबारा उठना पड़ता है। बहरहाल इसी तरह फिर जब रात होती है तो उससे भी उनके काम नहीं मुतासिर होते ना, वो भी काम फिर उनके खुद ब खुद होने लगते हैं। तो बात यही है कि अल्लाह ताला इंसान को अपनी कुदरतें दिखाता है, निशानियां दिखाता है। इसी तरह की लोग जो बातें बताते हैं ना, उनको मैं बड़े इस नज़र से सुनती रहती हूँ कि अल्लाह ताला ये सब कैसे कर रहे हैं ना। मुझे नहीं पता ये बात जो मैंने एक सुनी सही है कि नहीं, ये जो अभी हाल ही में जलजला आया एक जापान और उसके इर्द गिर्द में, तो किसी ने बताया कि उसके बाद से हवाओं का रुख बदल गया। मैंने कहा अच्छा वो क्या होगा? कह रही उससे खबरों में ये आ रहा है कि अब दिन छोटे हो जाएंगे। तो मैं एकदम सोच में पड़ गई कि अब ये क्या इसकी हिकमत है, होगा कि नहीं। लेकिन जो ही मैंने ये बात सुनी कि दिन छोटे हो जाएंगे अब सारी दुनिया में, मैंने कहा ये तो क्यामत की निशानी है कि वक्त बहुत जल्दी गुजरेगा। तो वो क्या नहीं कर सकता? यदि मैं सोचती हूँ कि अभी मैं बोल रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अगला लफ्ज़ भी नहीं बोलूँ अगर अल्लाह ताला मुझे पकड़ ले। कुछ नहीं को कर सकता अगर अल्लाह ताला बंदे को करने की इजाज़त ना दे। इंसान की ज़िंदगी में 3 मुख्तलिफ हालतें आती है ना, बचपन बहुत बेबस, कोई कुदरत नहीं, साइड भी नहीं पलट सकते, मक्खी बैठ जाए नाक पे तो उड़ा नहीं सकते, पेट में दर्द है तो बच्चा बता नहीं सकता। फिर जवानी होती है, खूब जौबन, ऐसा लगता है बस कुदरत आ गई, सब कुछ कर सकते हैं। कितने दिन और क्या कुछ कर सकते हैं पता चल जाता है जब वक्त आता है। तो चंद चीज़ों का नाम, ज़रा थोड़ी सी चाल अच्छी हो गई, ज़रा जिस्म में ताकत आई, तो हम अपने आप को इतना कुदरत वाला समझते हैं, फिर बुढ़ापे की तरफ फेर दिया जाता है। ये कौन है जो हमारी ताकत लेता है और दे देता है? ये उसकी ज़ात है, वो जो चाहे करे। किसी को बचपन में मार दे, किसी को ऐन जवानी में पकड़ ले, और किसी को बुढ़ापे में एड़ियां रगड़ता हुआ छोड़ दे, इंसान किस बात का मान करता है? कैसे अपने आप को बड़ा समझता है? ये अल्लाह की शान है जो बंदे को मुख्तलिफ वक्तों में अपना आप याद दिलाती है। वो लोग जो तकब्बुर करते हैं, वो इस गलत फहमी में रहते हैं कि इस दुनिया में रहने वालों की किस्मतों के फैसले हम करेंगे। एक बीज से दरख्त नहीं निकाल सकते, करोड़ों बीजों से दरख्त उगे हुए हैं दिन में, रात में आप देखें इर्द गिर्द कौन कर रहा है? ये कुदरत वाले की शान है, वो ये सब कुछ कर रहा है। तो दुनिया में ज़रा सा किसी को इकतदार मिल जाए ना, कुदरत मिल जाए, तो आप देखिए अपनी खूबियों को कितना मिसयूज़ करता है। अल्लाह की ज़ात को इतना कुछ मिला, इसके बावजूद वो उसको गलत इस्तेमाल नहीं करता। किसी को देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, किसी को ना दे तो कोई ले नहीं सकता। माँ के पेट में बच्चा है कि बच्ची है नहीं पता, कैसा होगा, ठीक पैदा भी होगा नहीं पता। ज़िंदगी में हम कितने काम सिर्फ एक्सपेक्टेशंस पे कर लेते हैं, शायद हो जाए, शायद ज़रूरत पड़ जाए, चलो ऐसे है वो है कर लेते हैं। और अगर आप सारी कायनात को छोड़ के सिर्फ अपनी ज़मीन को ले लें और सारी ज़मीन को छोड़ दें, सिर्फ इंसान और नबातात की ज़िंदगी पे नज़र डाल लेना, तो आपको अल्लाह की कुदरत के वो करिश्मे दिखेंगे कि आप दंग रह जाएंगे। बच्चा कैसे बढ़ता है, पौधा कैसे फलता फूलता है, सारा फल उतरता फिर लग जाता है। आजकल यहाँ चूंकि विंटर है तो दरख्तों के ऊपर पत्ते नहीं है, अब सूखी टहनियाँ, जिसको देख के हमारे जैसा बंदा कहे कि ये कुछ नहीं, बल्कि ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो जगह अल्लाह ताला ने आप दी वहाँ हमें क्लासेस के लिए, तो बाहर कुछ बैनर वगैरह लगाना था तो सूखी सूखी टहनियाँ थी ना, तो किसी ने उनको काटना शुरू किया कि भाई ये तो जगह रुक रही है, इसी की जगह पे हम लगाते हैं। तो जो वहाँ रहते हैं तो उन्होंने बताया कि देखिए इसको ना काटें, ये गर्मियों में तो बहुत खूबसूरत बेल बन जाती है, क्योंकि अभी तो सूखी सूखी टहनी है। और वाकई फिर मैंने देखा जो जगह हमारे पास है, तो उसको हमने ऐसी गूगल में देखा, तो इतनी खूबसूरत तस्वीर बाहर से दिखे, क्योंकि वो समर की थी, तो मैं हैरान रह गई कि देखें इस वक्त हमारे सामने जो बेल है वो इतनी सूखी भी है, लेकिन गर्मियों में ये ऐसी हो जाएगी कि बिल्कुल सब्ज़ फ्रेश। जो लोग ऐसे वक्त में सूखी टहनियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर वो बाहर का मज़ा भी नहीं ले पाते। यही ज़िंदगी का सबक है कि वो अलकादिर की ज़ात है कि सूखे को हरा कर दे और हरे को सूखा कर दे। ज़रूरत है इस बात की कि इंसान माने तो सही, क्या फिर इस कादिर के साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए? हम कैसे अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा करें, अपने आप को मजबूर समझ के, उसके कानूनों में अपने आप को बांध के, उसका पूरा इख्तियार अपने ऊपर तस्लीम करके, मान के वो सब कुछ कर सकता है, इसलिए मैं डर के रहूं, मैं अपने आप को नीचा ही रखूं, अपनी कुदरतों के दावे कम करके, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, ये तो फुला, ये तो फुला, कुछ नहीं कर सकता एक इंसान अगर अल्लाह ताला का हुक्म ना हो। इसी से फिर इंसान अपने आप को परखता है ना, और जो बंदा अपने आप को हरफन मौला समझेगा फिर वो तकब्बुर का भी शिकार हो जाता है। आप देखें कि उसकी कुदरतें तो हमें कहाँ कहाँ दिखती हैं ना, कायनात के अंदर बहुत कुछ। मसलन हज़रत ईसा की पैदाइश को देख लीजिए, कैसे पैदा कर दिए गए, फिर उनको जो मोजज़ात मिले, उन्हीं मोजज़ात को देख के लोगों ने ये शक कर लिया कि हज़रत ईसा ही नौज़ुबिल्लाह खुदा है। लोग हैरान हो जाते हैं किसी का इतना सा कमाल देख के, और रब्बे कायनात की वो सारी चीज़ें देख कर लोग हैरान नहीं होते। तो ज़रूर इस चीज़ पे गौर करना है, फिर इसी तरह अल-क़ादिर के साथ अपना ताल्लुक़ इस तरह भी पैदा करना है कि वो अल-क़ादिर होकर इतनी कुदरत पा के लोगों को मोहलत देता है, तो क्या फिर मैं किसी पे दस्तरस पा लूँ, कोई मेरे काबू में आ जाए तो क्या मैं उसको नहीं छोड़ूंगी? यानी आप अपने मातहतों के साथ अच्छा मामला करें। मुझे इस वक्त वो भी हदीस याद आ रही है कि जो तीन लोग गार में फंसे थे और सब ने अपनी एक एक नेकी याद की कि जिसकी वजह से गार में रास्ता बन गया, तो उसमें से एक शख्स ने क्या कहा था कि मेरी चचा की बेटी थी और मुझे उससे बड़ी मोहब्बत भी थी, और मैंने उसको किसी ऐसे वक्त में पा लिया कि मैं उस पर पूरा इख्तियार रखता था, कुदरत रखता था, लेकिन मैंने अल्लाह के लिए उसको छोड़ दिया, तो जो रास्ता बन गया, तो क्या हमारा भी इस नाम के साथ ये ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि हम जब किसी गुनाह पे कादिर हों तो उसको छोड़ दें? इसलिए कि गुनाहों पे कादिर होना जो होता है ना, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक टेस्ट होता है, एक इम्तिहान होता है। उसने जो कुछ बना दिया, बस उसको पाकर उसके आगे झुक जाएं और उसके साथ अपना ताल्लुक़ बेहतर से बेहतर बनाते रहें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके अंदर भी वो सिफात पैदा हो जाएंगी जो अल्लाह को पसंद है। और बड़ी अच्छी दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह तू मेरे लिए अपने नफ्स पे काबू पाना आसान कर दे, मुझे अपने नफ्स पे काबू दे दे। हम सब पे काबू पा लेते हैं, नहीं पाते तो अपने ऊपर नहीं पाते, सारे हमारी बात मानते हैं, नहीं हमारे काबू में आता तो हमारा नफ्स नहीं आता। लोग जिन्नों तक को काबू कर लेते हैं, लोग दूसरों के साथ भी ताल्लुक़ रखते हैं और अपने नफ्स को छोड़ देते हैं। हमारी कुदरत है कितनी, एक सुई नहीं बना सकते, ताकत ना हो ना एक कलम नहीं तराश सकते, खाना नहीं खा सकते, सामने रखा हुआ हाथ उठाने की हिम्मत नहीं, दांत चबा नहीं सकते, स्टमक हजम नहीं कर सकता, हम किस किस मोड़ पे अल्लाह ताला के सामने बेबस कर दिए जाते हैं। पहाड़ों को देखें कितने बड़े हैं, समंदरों को देखें कितने गहरे हैं, पानी को देखें कितना हल्का है। आप चार बल्ब लगा लें तो आपकी बिजली का बिल बढ़ जाता है। वो ज़ात जिसने आसमान पे इतने कुमकुमे लगा दिए, ये कैसे हुए? ये आसमान क्यों नहीं गिरता? ये सितारे क्यों नहीं गिरते? ये चाँद क्यों नहीं गिरता? क्या ये बातें, ये चीज़ें हमारे दिलों पर लगी हुई मोहरों को नहीं खोल सकती? क्या हमें अल्लाह की ये कुदरत नहीं दिखती? ज़मीनों के नीचे, पहाड़ों के नीचे, समंदरों के नीचे करेंगे कोशिश तो मिलेगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला की कदर करने वाला बना दे। कादिर और कदीर में थोड़ा सा फ़र्क है। कादिर आम लफ्ज़ है फ़ाइल के वज़न पे, और कदीर के अंदर कंटिन्यूटी है, तसलसल, दवाम। हर वो वज़न जो कदीर, फ़ाइल, रहीम, बशीर इस पे होता है ना, उसमें तसलसल होता है, दवाम। यानी एक तो होता है ना, आप थोड़ी देर के लिए किसी पे कादिर हुए, वक्ती तौर पे हो सकता है आज आप किसी पे कादिर हैं तो कल आप उसके आगे मकलूब हुए हो, पॉसिबल है। अल्लाह की ज़ात ना सिर्फ के कादिर है बल्कि कदीर भी है। उसका गलबा, उसकी कुदरत कभी खटी नहीं, मुसलसल कोई चीज़ उसके आगे पर नहीं मार सकती। आसमान ज़मीन एक मदार पे घूम रहे हैं, कोई जुर्रत नहीं कर सकता कि 19 से 20 इधर से उधर हो जाए। रात दिन सुबह शाम हर चीज़ उसके आगे। समंदर की मौजें जब बाहर आती हैं हदों से, तो वो भी हमारा इम्तिहान है। वो अल्लाह के हुक्म के आगे उसी तरह झुकी होती हैं। एक मुर्गी का बच्चा अंडे के बीच में एक ख़ास मुद्दत तक रहता है, फिर निकलता है, फिर बड़ा होने लगता है और फिर फना हो जाता है। ये सब खुद बखुद हो रहा है? नहीं, ये सब कुछ अल्लाह के लिए है। इसी नाम के साथ एक तीसरा नाम भी मिलता है, वो भी हम इसके साथ ही करेंगे, अल मुक्तदिर, कुदरत रखने वाला। रूट इसका भी वही है, काफ दाल रा। सूरत कमर आयत 42 में आता है, कज़्ज़बू बी आयातिना कुल्लिहा फ़अख़ज़नाहुम अख़्ज़ अज़ीज़ मुक्तदिर। मगर उन्होंने हमारी सारी निशानियों को छुटला दिया, आखिरकार हमने इनको पकड़ा। जिस तरह कोई ज़बरदस्त कुदरत वाला पकड़ता है, तो मुक्तदिर में पकड़ का मानी है। सूरत कमर ही की आयत 55 में आता है, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहर फी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीक़िन मुक्तदिर। नाफरमानी से परहेज़ करने वाले यकीनन बागों और नहरों में होंगे, सच्ची इज्जत की जगह बड़े जी इक्तदार बादशाह के करीब। अजीब महफिल होगी कि जहाँ बड़े लोगों की महफिल सजी होगी, आम लोग नहीं वहाँ होंगे। वहाँ अल्लाह तकवा वालों को बिठाएगा, नाफरमानियाँ करने वाले, नाफरमानियों से बचने वाले, परहेज़ करने वाले बागात और नहरों में होंगे। सूरह कहफ आयत 45 में आता है, वकानल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक्तदिरा। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। सूरह ज़ुख़रफ़ आयत 42 में आता है, औ नुरियन्नकल्लज़ी वअदनाहुम फ़इन्ना अलैहिम मुक्तदिरून। या तुमको आँखों से इनका वो इंजाम दिखा दें जिसका हमने इनसे वादा किया है, हम इन पर पूरी कुदरत रखते हैं। वो ज़िंदगी देने वाला, मौत देने वाला, वो उरूज भी देता है और जवाल देता है। बहार उसके हुक्म से आती है, खजां उसके हुक्म से आती जाती है। खुशियों में गम, गमों में खुशियां वो देता है। आज अगर ऐश और खुशहाली है तो मत सोचो कि ये हमेशा रहेगी। कोई भी चीज़ लाजवाल नहीं, ये तुम्हें अल्लाह के हुक्म से मिला है और उसी ज़ात के हुक्म से तुमसे छिन भी सकता है। इसलिए ज़रूरत है कि अल मुक्तदिर की पकड़ से बचा जाए, डरा जाए, उसके ऊपर अपने गलबे को महसूस किया जाए। इतनी बड़ी कायनात जिसके आगे झुकी हुई है, हम भी उसके आगे झुक जाए। कहाँ थे हम? माँ की और बाप की सुलभ में, नुतफ़ों की शक्ल में अल्लाह ने कैसे एक खूबसूरत शक्ल दे के हमें दुनिया में भेज दिया। क्या ये उस ज़ात की निशानियाँ नहीं हैं? तो हमारा भी इस नाम के साथ यही ताल्लुक़ होना चाहिए कि अल्लाह ताला की बड़ाई को अपने ऊपर महसूस करें और महसूस करें कि अल्लाह ताला इतने गलबे के बावजूद हमसे मोहब्बत करता है। तो क्या हम इतने कमज़ोर होते हुए उसकी तरफ नहीं झुकेंगे? क्या ज़रूरत नहीं है उसके सामने झुकने की, गिड़गिड़ाने की, तड़पने की, बेचैन होने की? दुनिया में ज़रा किसी के पास 4 पैसे आए ना तो लोग उसके गिर फिरते हैं, उसके पीछे जी जी करते हैं। तो क्या अल्लाह ताला की ज़ात की वो कदर है जो दुनिया के किसी एक बड़े इंसान की होती है? अमूमन दुनिया में लोग देखिए पैसे को सलाम करते हैं, मारूफ बात है, जिसके पास पैसा होता है लोग उसके आगे पीछे फिरते हैं। तो क्या हमने अल मुक्तदिर की उतनी भी कदर की जितनी इंसानों की करते हैं? देखिए, जो बंदा अल्लाह की मर्ज़ी के आगे अपने आप को झुकाता नहीं है ना, बस वो कुछ भी कहे उसने कदर नहीं की। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, और लोगों ने अल्लाह की वो कदर नहीं की जो करनी चाहिए थी। इसी लफ्ज़ मुक्तदिर से फिर इकतदार का लफ्ज़ है, इकतदार 3 दफ़ा है ये लफ्ज़ पूरे कुरान पाक में। अल्लाह से दुआ है कि हमें सुनी हुई बातों और कही हुई बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। और उस मुक्तदिर की तो इतनी कदर है कि वो ख़ुद कहता है कि अल किब्रु रिदाई, किब्रियाई मेरी चादर है, जो मुझसे ये लेना चाहेगा मैं उसका जीना धोबर कर दूंगा। ये जिन्होंने भी दुनिया में खुदाई का दावा किया ना, असल में उन्होंने मुक्तदिर की कुदरतों में हाथ डालने की कोशिश की, उसका फिरौन कह लें या नमरूद कह लें या शद्दाद कह लें। अब तो वो ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए अल्लाह ताला से हमारा, जो इस तदब्बुर से पहले था फीका रूखा। बचपन से ये तसव्वुर आता है, अल्लाह की ज़ात की बात होती है, नहीं अल्लाह मारेगा, अल्लाह गुस्सा करेगा। मैं सोचती हूँ अगर हमारे बच्चों के कोर्सेज में ये चीज़ शुरू हो जाए ना, अल्लाह ताला से मोहब्बत, उस पे गौर, बात क्या कुछ हो जाए अल्लाह के हुक्म से।